बोलिए सच्चिदानंद भगवान की हरि ओम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तंति दिव्ये स्तवे वेदैशांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्य व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् ण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् नारायण नारायण। सब जग नारायण नारायण नारायण। सब जग नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नर नारायण नारायण नारायण। नर नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन रायण नारायण नारायण। सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। सद्घन चिद्घन आनंद घन कल्याण गुणगण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार करुणा वरुणालय प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ प्रातः के इस पावन बेला में ईशावास्य उपनिषद के द्वारा हम स्वस्वरूप श्रवण कर रहे हैं, अपने ही स्वरूप के विषय में बारे में सुन रहे हैं, अपनी महिमा, अपनी गरिमा, अपनी अखंडता, अपनी नित्यता, अपनी शाश्वतता, जो हमारा अपना है, अत्यंत आपा, उसी के लिए कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, जिसे जिस आपा को हमने जीव समझ लिया था और अपने को जीव पहचान कर जो अनेका अनेक भ्रांतियां हो रही थी और इन भ्रांतियों से, इस अविवेक से युक्त होकर जो कार्य हो रहे थे, उन कार्यों से अविवेक जनित कार्य अविचार पूर्वक कर वो हमारे लिए बंधन के कारण बने और ब्रह्म स्वरूप आत्मचिंतन के द्वारा, स्वस्वरूप के विचार के द्वारा, विचार पूर्वक, गंभीरता पूर्वक अपने आप के साथ, अपने साथ न्याय करते हुए जब विचार किया तो पाया, विचार काल में ये पाया कि मैं, जिसे मैं कहकर बुद्धि के साथ अहम वृत्ति से कर्ता भोक्ता मानता था, वह मैं नहीं, वह अहम जो वृत्ति है वो तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और उस वृत्ति से ही, उस मैं से में ही भासमान, उस मैं से ही ये सर्व जगत प्रकाशित हो रहा है और उसी के कारण ये जगत जानने में, देखने में आ रहा है। वह मैं जगत से पूर्व भी था, अब भी है, ज्यों का त्यों है, उसमें जगत के होने अथवा न होने में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार जब स्वस्वरूप दृष्ट हुआ, विचार हुआ, विचार दृष्टि से स्वरूप पर विचार किया गया तो पाया कि जिसे हम जगत जान करके अपने से भिन्न देख रहे थे अब तक, ये भिन्न नहीं है, अभिन्न है, क्योंकि एक आत्मा ही ये भिन्न भिन्न रूपों में भास रहा है, दिख रहा है और जो अनेक रूपों में दिखाई पड़ रहा है वह अनेक नहीं है, एक ही है। इसीलिए कह दिया ईशावास्य इदम सर्वम्, ये सब वही है, उसके अतिरिक्त यहां और दूसरा कुछ नहीं। ऐसा जान करके, पहचान करके, इसी के साथ, इसी दृष्टि को लेकर हमें संसार में कर्म करते हुए, क्योंकि ये शरीर कर्म करने के लिए हमें मिला है और कर्म के बिना इस शरीर को अलग भी नहीं किया जा सकता। कर्म के साथ जो इंद्रियों की उपासना है, ये इंद्रियां और कर्म दोनों ही समुचय रूप से एक दूसरे के बाद, एक दूसरे के साथ समुचय रूप से, और कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के समन्वय से, समन्वय कहते हैं एक दूसरे के पूरक, और समुच्चय कहते हैं दोनों बिल्कुल साथ साथ। इस प्रकार यह सब कार्य हो रहा है और इसको पहचानते हुए मैं इसका जो हो रहा है उसे मैं देखने वाला, दृष्टा, साक्षी, सर्व को जानने वाला मैं वह आत्मस्वरूप हूं, ऐसा अपने विषय में अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हुए संसार में हम कर्म करें तो वो कार्य हमारे लिए कभी बंधन के कारण नहीं हो सकते। जीवन निर्वाह करना है, जीवन जीना है। कैसे? कुर्वन्नेह कर्माणि जिजिषंग सत्संग समा। कुर्वन्नेह कर्माणि, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, जियो। ऐसा जो हमें श्रुति उपदेश देती है इन्हीं मंत्रों का, कर्म करना है तो कैसे करना है और जगत की पहचान हमारे पास क्या होनी चाहिए, संसार में रहना है तो संसार को पहचान कर रहना है, अपने विषय में अपनी जानकारी हमें ठीक करनी है, अपने को जो श्रुति बताती है वैसा हमें जानना है, अपने विषय में, जगत के विषय में, ये जगत क्या है और मैं क्या हूं, ये दोनों जानकारी, परमात्मा क्या है और आत्मा क्या है, जगत क्या है, जगदीश्वर क्या है, जीव क्या है और माया क्या है, इसके विषय में हम ठीक ठीक जान लें, बस ये इस उपनिषद के 18 मंत्रों के द्वारा 16-17 तक कल हम लोगों ने विचार किया। गत वर्ष से लेकर ये उपनिषद विचार कर रहे थे। मुझे स्मरण हो रहा है कि जब मैं पहली बार प्रेमपुरी आई थी, बहुत साल हो गए, पूरा सन याद नहीं है मेरे को, पर मैंने पहले सुबह क्या विषय लेंगे माता जी, क्या चर्चा करेंगे, शाम पहले तो गीता पर हुआ था, उसके बाद तो हरि भाई मेरे से पूछने लगे माता जी क्या विषय लेंगे, तो मैंने कहा था ईशावास्य लेंगे, तो बहुत खुश हुए, कहने लगे ईशावास्य, तो ये जो मेरा उपनिषदों में सबसे प्रिय उपनिषद। और सच्ची बात तो ये है कि ये उपनिषद एक ऐसी उपनिषद है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो ये पुस्तक मेरे हाथ लगी, तब तक इतना वेदांत का परिपक्व चिंतन भी नहीं था। और ये ठीक है कि बाल्यकाल से मेरी जो शिक्षा की परंपरा रही वो कोई स्कूल कॉलेज को लेकर के तो रही, प्रारंभिक शिक्षा मैंने कोई स्कूल में नहीं पाए, गुरु परंपरा से जो कुछ मुझे मिला उसी परंपरा में मुझे जब ये पुस्तक मेरे हाथ लगी तो पहले मैंने पढ़ा अपने आप, जब और वो भी शंकर भाष्य लगा, और वही पुस्तक आज तक मेरे हाथ में है, तो इसे मैंने बड़े प्यार से रखा। गीता प्रेस की निकली हुई ये पुस्तक, ये उपनिषद मुझे बहुत प्रिय लगी और आज भी मुझे प्रिय है। यदि मुझे किसी उपनिषद से प्यार है सबसे ज्यादा तो ईशावास्य से ही है। तो कहने का अर्थ ये था, इस उपनिषद पर चिंतन करते हुए बड़ा आनंद प्राप्त होता स्व को। तो आइए, बड़े प्रेम से हमने इस पर विचार किया और कल चर्चा कर रही थी मैं कि उपनिषद हमें क्या कहती है। ये मंत्र भाग है यजुर्वेद का 40वां अध्याय और सारी उपनिषदें संहिता भाग की हैं, ब्राह्मण भाग की हैं, अरण्य भाग की हैं, परंतु एक उपनिषद है ईशावास्य जो वेद का मंत्र भाग है। मंत्रों की बड़ी महिमा है और ये मंत्र भाग में ही यही मंत्र ईशावास्य उपनिषद के, जिनमें 17वां मंत्र था कल मैं विचार कर रहा, कल वायु निलेहा मर्तामर्तम तथेव भस्मांत शरीरम ओम क्रतो स्मरण क्रत स्मरण क्रतो स्मरण क्रत, बार बार पुनरोक्ति की है, ओम का स्मरण करो, ओम का स्मरण करो और ये शरीर भस्मांत पंचभूतों का बना हुआ शरीर भस्म कहते हैं राख को और भस्म धारण करते हैं कौन बोले भगवान शिव और भगवान शंकर का तो भस्म से अभिषेक ही होता है तो ये भस्म कैसे बनी जल रीति भस्मम वायु रीति भस्मम अर्थात जल को जल में मिला दिया जल भस्म हो गया अग्नि में अग्नि को मिला दिया जल भस्म हो गया पृथ्वी में पृथ्वी को मिला दिया भस्म हो गया जो जिसका तत्व है उस तत्व में विलीन हो गया इसी को भस्म कहा गया है बाकी क्या रहा जहां कुछ नहीं रहता उसको हम क्या कहते हैं कुछ नहीं रहा जी राख हो गई अर्थात ब्रह्म विद्या के चिंतन से स्वस्वरूप चिंतन करते हुए जब स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर को हम समाप्त कर देते हैं तो तब केवल 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 एक प्रतीक रूप ओम ब्रह्म रह जाता है और इस प्रतीक रूप ब्रह्म का स्मरण करते हुए प्रतीक रूप ब्रह्म का चिंतन करते हुए हम अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं 18वें मंत्र में अग्ने नय सुपथाराय अस्मात् विश्वानि देव वायुरानि विद्वान युद्ध स्मरण जुराणा मे भूयिष्ठ ते नम उक्ति विधेम हे अग्नि अग्नि से ही प्रार्थना क्यों की गई बोले अग्नि से प्रार्थना इसलिए की कि अग्निदेव अग्नि और देव ये कर्म के साक्षी देवता है अग्नि साक्षी हैं इसलिए अग्निदेव से प्रार्थना की कि जो सब के कर्मों के साक्षी बनकर सबको कर्म फल भोगने को आप प्रदान करते हैं हे देव आप ही हैं कि जो सबके कर्मों के शुभाशुभ कर्मों के साक्षी बनकर सबके कर्मों को देखकर और कर्मानुसार यथा योग्य उनके लिए उनके कर्म के अनुसार जो भोग हैं वो सबको प्रदान करने वाले आप ही हैं और आप ही सत्कर्म को देखकर सन्मार्ग प्रदान करने वाले अग्ने सुपथाराय अर्थात आप हमें क्या दें बोले हमारी इस उपासना से इस विचार से हमें हमारा सन्मार्ग प्रदान करें जिस सन्मार्ग पर चलकर अर्थात सन्मार्ग वो मार्ग है जिस मार्ग में ज्ञान है ज्ञान को जानने के मार्ग को सन्मार्ग कहते हैं ज्ञान का मार्ग आप हमारे लिए प्रदान करें अग्नि प्रकाश है वहां अंधकार नहीं है अविद्या नहीं है अज्ञान नहीं है तम नहीं है और आप हमको ज्ञान का मार्ग ज्ञान पर चलने का मार्ग सन्मार्ग आप हमारे लिए प्रदान करें ऐसी जो प्रार्थना है बोले वो किसके साथ है अग्निदेव से क्योंकि अग्नि त्वम प्रत्यक्ष ब्रह्मास्मि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो अग्नि के द्वारा अग्नि की उपासना करते हुए अग्निदेव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हमारे पाषाण के समान पत्थर के समान जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं ये पाप क्या हैं पूर्व 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 जन्मों के पिछले पिछले जन्मों के जो हमारा क्रियमाण है जो हमने कर्म किए वो कर्म जो हमने कर्म किए वो कर्म उस कर्म को कहते हैं क्रियमाण कर्म उन कर्मों का कुछ तो फल तुरंत मिल गया हाथ के हाथ मिल गया और कर्म होने के बाद फल मिलकर वो समाप्त हो गया कुछ कर्म ऐसे हैं जो कर्म तो हुए पर उनका फल तत्काल नहीं मिला, और जो तत्काल फल नहीं मिला तो वो जमा हो गया, उसे संचित कह दिया, और वो संचित कर्म ही संचित और संचित से जो भोगने के लिए हमारे सामने आया उसका नाम प्रारब्ध हो गया। इस प्रकार क्रियमाण से ही संचित और प्रारब्ध। बोले ये कितने जन्मों के हैं, इन कर्मों की जो कठोरता है वो कितने कर्म हैं। बोले पाषाण से भी, पत्थर से भी अधिक ये कर्म की पाषाणता पाप है। इन पापों को अग्नि जैसे सारा जला करके भस्म कर देती है। ज्ञानाग्नि सर्वाणि कर्वाणि भस्म सात कुरते हिताय, भगवान कहते हैं ज्ञान की अग्नि जन्म जन्मांतर के कर्मों को जला करके भस्म कर देती है। कैसे करती, इसीलिए कहा ज्ञानेन सदृश पवित्र। संसार में गीता में भगवान कहते हैं ज्ञान के समान पवित्र और कुछ वस्तु नहीं। यहाँ जिस अग्नि से प्रार्थना की जा रही है वह ज्ञानाग्नि है, ज्ञान रूपी अग्नि है, और उस अग्नि से प्रार्थना। ये ज्ञान क्या है, बोले ज्ञान प्रत्यक्ष ब्रह्म है, प्रत्यक्ष परमात्मा है, उसी से प्रार्थना की जा रही है। ये अग्नि सुपतहाराय अर्थात अस्माकं विश्वानि देव वायुनानि विद्वान, आप ज्ञानमय हैं इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपने सुपत के लिए, जन्म जन्मांतर के हमारे कर्म जल करके भस्म हो जाएं, पाप नष्ट हो जाएं। बोले कैसे नष्ट हो, कर्म करते हुए। मान लो किसी आदमी ने एक नहीं एक लाख पाप कर्म किए हुए हैं, और एक लाख पाप कर्म जो उसने किए वो पाप कर्म उसका संचित है, माने स्टोर है, जमा है, और सबसे आखिर में वो एक दिन भूल चूक से प्रेमपुरी आ गया, और प्रेमपुरी में सत्संग चल रहा था, हनुमत कथा चल रही थी, तो उस कथा में उसने सुन लिया कि हनुमान जी का स्मरण करने से बल बुद्धि ज्ञान विद्या ये सब प्राप्त होता है, और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, हनुमान एक ऐसे देव हैं जो अजर अमर हैं, जिनके लिए ऐसा हम नहीं कहते हनुमान जी हुए थे, हनुमान जी हैं, चारों युग पर ताप तुम्हारा, पहले भी आप थे, अब भी हैं, अभी भी हैं, हनुमान जी तो मिल सकते हैं। हनुमान जी सर्व व्यापक होते हुए भी जब जब उन्हें उनको जो कुछ हो रहा है वो सब देख रहे हैं। हनुमान जी अजर अमर हैं, हम लोगों के बीच में हैं। तो उसने सोचा इनकी उपासना करनी चाहिए, सुना महिमा तो उसमें आया कि उसने हनुमान जी का स्मरण किया, भजन किया, पुण्य कर्म हो गया। भगवत हनुमान जी के स्मरण करने का जो पुण्य था वो सबसे आखिर उसके स्टोर में चला गया। तो नियम क्या है, जो चीज सबसे बाद में भीतर जाती है, स्टोर में जो सामान सबसे आखिर में आप रखते हो, जब बाहर निकालने की बारी आती है तो सबसे पहले बाहर निकलता है, तो वो एक पुण्य बाहर निकल आया। बोले उस एक पुण्य से क्या हो, पुण्य से पुण्य की वृद्धि होती है, जैसे पैसे से आप पैसा कमाते हैं उसी प्रकार पुण्य से पुण्य की वृद्धि होती है, पुण्य से ही पुण्य प्राप्त होता है, और उससे उसे और पुण्य प्राप्त हो गया कि और सत्संग में आने लगा और सुनने लगा, उसकी रुचि बन गई कि यहां नित्य सत्संग होता है, धीरे धीरे उसकी पुण्य की वृद्धि होने लगी, और उस पुण्य वृद्धि के साथ साथ पुण्य पुंज जब इकट्ठे हुए, थोड़े से पुण्य इकट्ठे हो गए, तो उसकी रुचि क्या हो गई, संत चरणों में प्रीति हो गई, प्रेम हो गया। और उस प्रेम से वो सत्संग करते करते उसे ये बात समझ में आ गई। एक दिन पहले तो उसने भले ही लालच से किया, पर धीरे 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 सुनते सुनते उसके अंदर ये बात आ गई, अरे ये संसार तो बिल्कुल सब नश्वर है, परिवर्तनशील है, और ये तो जो होगा सो होगा, इसलिए इसकी फिक्र किए बिना तुम भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो। ये बात समझ में आ गई और वो बड़े प्रेम के साथ भगवत ध्यान करने लगा, भजन करने लगा, कीर्तन करने लगा, तो उसके अंदर भक्ति भाव जागृत हो गया, भक्ति भाव प्रकट हो गया। और भक्तिपूत हृदय होने पर उसके अंदर की धीरे धीरे वासनाएं कम हो गई। एक स्थिति ऐसी आई कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया और उस शुद्ध अंतःकरण के अंदर भगवत भक्ति, भगवत प्रेम जब उसके अंदर प्रकट हुआ, तो उस भगवत प्रेम से, क्योंकि भगवत स्वरूप क्या है, बोले भगवत स्वरूप तो अपनी आत्मा ही तो है, जिसे भक्ति में भगवान कहते हो, भगवत स्वरूप कहते हो, वो अपनी आत्मा से अलग नहीं है। उसे क्या हो गया, उस भगवत स्वरूप में अनुरक्ति हो गई, आसक्ति हो गई, प्रीति हो गई। जैसी आसक्ति अब तक उसे संसार के व्यक्ति वस्तु पदार्थ से थी, वैसी की वैसी आसक्ति उसे, वैसी ही उसे रस उसे किस किस में आने लगा, अपने को, अपने स्वरूप, अपने भगवत स्वरूप में, अपने अंदर उसे आनंद आने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे कि मानो धीरे धीरे उसे भगवत रस बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसी स्थिति आई, उसका पूर्ण रूप से उसके अंदर में के अंदर एक क्षण ऐसा आया जिसके लिए आपने सुना इसी उपनिषद में, हृणमय पात्रेण, अर्थात जो अंदर से उसकी वासना थी वो वासनाएं मिटी, अर्थात ढक्कन खुला और उसके अंदर जो दिव्य, अत्यंत परम दिव्य ज्योति है, दिव्य प्रकाश है, वह आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो गया। यस्मिन् दृष्टि परावरे, वृत्ति उस स्वरूप के साथ साक्षात्कार कर गई, अपनी वृत्ति ही अपने स्वरूप के साथ अपने आप में जब वो साक्षात्कार को प्राप्त कर गई, तो जन्म जन्मांतर के भस्म साथ कुरुते था, उसके अंदर एक जन्म का नहीं, कई जन्म जन्मांतर के। इसलिए मुंडक कहती है, विद्यते हृदय ग्रंथि, क्षीयते सर्व संचय, यस्य सस्मानि कर्माणि भस्म। उसी समय, उसी काल में, उसी समय कैसा हो जाता है, उसके लिए कहा विद्यते हृदय ग्रंथि, क्षीयते सर्व संशय, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। और जिस समय हृदय ग्रंथि खुलती है, विद्यते हृदय ग्रंथि, क्षीयते सर्व संशय, यस्मिन् दृष्टे परावरे, उस समय, बोले किस समय, जिस समय अपनी दृष्टि, माने दृष्टि माने वो वृत्ति जो विशुद्ध वृत्ति है, वो अपने स्वरूप के साथ साक्षात्कार करती है, तो बस जन्म जन्मांतर के वह जो दिव्य आत्म साक्षात्कार की स्थिति है, तत्वबोध की स्थिति है, तत्वबोध होने के साथ ही जन्म जन्मांतर का उसका जो समूह है संचित कर्म का, वो सारे का सारा जलकर भस्म सात कुरुते, भस्मीभूत हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रह जाता। इसलिए अतत्व ज्ञानी की कोई प्रारब्ध नहीं, कोई क्रियमाण नहीं, कोई संचित नहीं, अर्थात तत्व ज्ञानी इस कर्म से ऊपर वह कर्म का साक्षी रहता है नारायण। इसलिए कहा कि उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, वो दिव्य ज्ञान अग्नि के रूप में है, इसलिए उसी अग्नि देव से प्रार्थना की गई कि आप मुझे वो सन्मार्ग प्रदान करें। जिस पर चल करके मेरे पाप जन्म जन्मांतर की वासनाएं जन्म जन्मांतर के संचित कर्मा भी प्रारब्धादि सब नष्ट हो जाए, इसलिए हम तेरे को अनेक बार नमस्कार करते हैं। नमः उक्ति विधेमा अर्थात नमः नमस्कार है, नमस्कार का अर्थ होता है नमे इति नमस्कार। नमे नमः माने मैं नहीं, इसका सरल सा अर्थ है नमस्कार माने नमः। नमः का अर्थ है मैं नहीं, जहां मैं यहां जो मैं कहा गया है सामान्य अहंकार सूचक में, हम लोग कहते हैं ना मैं, तो हमारा मैं कौन सा मैं, अहम माने अहंकार युक्त मैं। और यदि ये अहंकार युक्त में छूट गया तो फिर मैं नहीं अहंकार नहीं, जहां मैं नहीं वहां तू, तो फिर क्या रहेगा, बोले तू माने परमात्मा के लिए, मैं को मिटाकर परमात्मा के लिए समर्पण। और इस समर्पण के साथ नमः उक्ति विधेम, हम आपको एक बार नहीं अनेक बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार उस तत्व रूपी ब्रह्म के आगे अनेका अनेक प्रणाम करते हुए नमस्कार करते हुए नमे इति नमस्कार, मैं नहीं जो कुछ भी है प्रभु वो आप है, तुम हो मैं, और ये एक भाव है। और दूसरा भाव है कि जहां मैं होता है कबीरा मैं करता भया, जब तक मैं थी तब तक तू नहीं था, अब मुझ में मैं नहीं तो जित देखूं तित तू, जहां देखूं तुम ही तुम। जब तक मैं नजर आ रहा था तब तक तू नजर नहीं आ रहा था, अब मैं नहीं रहा तो केवल तू ही तू रहा, केवल तू ही तू रहा, जहां देखा जिधर देख। इसीलिए कहा कि जब तक मेरे अंदर अपने आप में ये कैसे विचित्र सी विडंबना है नारायण, खूब ढूंढा तुझे कुछ पता पाया नहीं, खूब ढूंढा तुझे कुछ पता पाया नहीं, जब तेरा पता पाया तो मेरा पता नहीं, तेरा पता जब मिला तो मेरा ही पता नहीं। तो इसलिए वह जो स्वरूप है वह जो मैं है उसको प्राप्त करने के लिए ऐसा समर्पण हो, नमस्कार से अभिप्राय है समर्पण, और परमात्मा के आगे पूर्ण समर्पण के साथ। इसलिए याद रखना शरणांगति समर्पण ज्ञान के मार्ग में भी है, भक्ति के मार्ग में भी है। भक्त का समर्पण किसी मूर्ति के आगे और ज्ञानी का समर्पण आत्मा के आगे। ज्ञानी समर्पित है आत्मा अनुरक्ति, अनुरक्ति को ही तो भक्ति कहा गया है। भक्ति क्या है, बोले परमानुरक्ति। अंगिरा ऋषि ने भक्ति सूत्र में परमा अनुरक्ति को ही भक्ति कहा है। जहां देवर्षि नारद कहते हैं कि भक्ति क्या है, बोले भक्ति तो ये है कि जिसमें परम परम भक्ति वो, और इधर अंगिरा ऋषि वो कहते हैं कि भक्ति वो है जिसमें परमानुरक्ति है, परम अनुराग। तो वह जो परम अनुराग है अनुरक्ति है वो किस में, बोले स्वस्वरूप आत्मा में। वास्तविकता है कि हर व्यक्ति को अपना आपा बहुत प्रिय है। हम कहते हैं कि संसार में हमें पुत्र प्रिय है, परिवार प्रिय है, संपत्ति प्रिय है, पर इन सब से भी अधिक प्रिय यदि कोई है तो व्यक्ति को अपना आप प्रिय है। अपना अपने आप के लिए, अपनी प्रियता के लिए सब है, सबकी प्रियता के लिए वो नहीं। तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से तो है, करते तो हैं, परंतु वह हमने अपने आप को क्या समझा हुआ है, यदि ठीक समझ गए, जिसको समझने के लिए विद्या और अविद्या कहकर, संभूति असंभूति कहकर, ईशावास्य के मंत्रों के द्वारा हमें बताया गया कि यही विद्या है और ये अविद्या है। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिक जन्य ज्ञान और प्रकृति, अव्याकृत प्रकृति, मूल प्रकृति, व्यष्टि और समष्टि, देवता के रूप से, ये सब उपासना के माध्यम से विस्तार के साथ ईशावास्य उपनिषद में ये सब समझाए और बताए गए हैं, और आप लोगों ने इनको बड़ी श्रद्धा के साथ सुना भी। परंतु आज ईशावास्य उपनिषद के इस 18वें मंत्र के साथ भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य द्वारा जैसे व्याख्या की गई, यथामति जैसा मुझे समझ में आया, जो मैं गुरु कृपा से, भगवत कृपा से समझ पाई, उसके प्रयास के अनुसार उसी को मैंने अपने शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हो सकता है कि मैं शायद उस भाव को आपको ठीक समझा पाई नहीं, ये कुछ हो रही, परंतु वास्तविकता में केवल इतना कहना चाहूंगी, ये जो श्रुति का उपदेश है किसी दूसरे के लिए नहीं है, ये बात जो कही गई इसे सुनते हुए हमें यही विचार करना चाहिए कि ये बात मेरे लिए कही जा रही है, मुझे समझाई जा रही है। गीता पढ़ते अथवा किसी ग्रंथ को सुनते हुए ये आप सोचेंगे, ये बात तो अर्जुन को भगवान ने कही थी, अर्जुन तो एक निमित्त है, पर जो कहा जा रहा है वो तो आपको ही कहा जा रहा है, आपको ही समझाया जा रहा है। श्रुति माता भगवती हमें समझाती हैं कि हमारे लिए तीन मार्ग है, एक मार्ग कर्म का है, दूसरा मार्ग उपासना का है, तीसरा मार्ग ज्ञान का है। इन तीनों मार्गों से, तीनों मार्गों में जो कर्म का मार्ग है, इस कर्म के मार्ग से आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं हो सकती, अत्यंत दुखों को दूर, और हम सब की चाह है, हम सब यही चाहते हैं हमारे जीवन में अत्यंत दुखों से हमें छुटकारा मिले और परम परमानंद को हम प्राप्त हों। कोई नहीं है हम में से जो अपने लिए दुख चाहता हो, क्लेश चाहता हो, कष्ट चाहता हो, सबकी नैसर्गिक चाह है आनंद की प्राप्ति। हम सब लोग सुख पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, कोई नहीं है जो दुख पूर्वक जीना चाहता हो, सबकी चाह है कि मैं सुख पूर्वक जीवन जीऊं। तो सुख पूर्वक जीवन जीने के लिए सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, उसको हमें पहचानना होगा। इसलिए कर्म से जो मिलने वाला सुख है वो पर सुख है, दूसरे से जो प्राप्त मिलने वाला सुख है उस वो सुख शाश्वत नहीं हो सकता, वो क्षणिक है और वो जड़ता को प्राप्त होने वाला है। इसलिए कर्म जन्यक सुख वह स्वसुख नहीं है। और दूसरी बात, उपासना आदि से जो मिलने वाला सुख है, भगवान का भजन करते हैं, उपासना करते हैं, और उपासना में अपने भाव के राज्य में, जिसे हम मनोराज कहते हैं, मनोराज में विचरण करते हुए बड़े आनंद की प्राप्ति होती है, सुंदर सुंदर भाव आते हैं उस स्थिति में रहते हुए। परंतु वह जो उपासना का सुख भी है नारायण, वो सुख भी अत्यंतिक सुख नहीं है, वो कुछ काल के लिए, उससे आपको सुख मिल सकता है। बोले कहाँ का मिल सकता है? वो स्वर्ग का सुख मिल सकता है, साकेत लोक का सुख मिल सकता है, बैकुंठ का सुख मिल सकता है उपासना के द्वारा। इसीलिए मुक्ति भी कई प्रकार की बताई है, सालोक्य है, सामीप्य है, सायुज्य है, परंतु कैवल्य मुक्ति जिसे हम चाहते हैं वो तो किसी विरले को प्राप्त होती है। उपासना के द्वारा मुक्ति मिलती है। बहुत लोग कहते हैं ना उपासना करो मुक्त हो जाओगे, परंतु कौन सी मुक्ति मिलेगी? सालोक्य मिलेगी, उनके लोक में वास मिलेगा। सालोक्य मिल सकती है, सारूप्य मिल सकती है, भगवान का रूप सामिप्य मिल सकता है, परंतु केवल्य नहीं। अत्यंतिक परम सुख जिसे हम कहते हैं वो केवल्य सुख तो किससे प्राप्त होता है? बोले ज्ञान से। और वह ज्ञान का मार्ग भी कौन, वह ज्ञान कौन सा ज्ञान? बोले वो ज्ञान परोक्ष ज्ञान नहीं, वो परोक्ष ज्ञान नहीं। अब करो स्वर्ग में जाकर के तुम्हें उसका सुख मिलेगा, वो ज्ञान नहीं। वो परोक्ष सुख सुख नहीं, वो परोक्ष ज्ञान ज्ञान नहीं, जो केवल परोक्ष रूप से जिसके लिए हमने बहुत सारा इकट्ठा, स्वर्ग ऐसा है, वैकुंठ ऐसा है, ऐसा करने से ऐसा होगा, उसका तरीका समझ लिया। भोजन बनाने की विधि हमें बहुत अच्छी मालूम है, परंतु उस विधि को जानने से, उसकी जानकारी इकट्ठा करने से हमारी भूख नहीं मिटेगी ना। उस भूख को मिटाने के लिए तो जानकारी के साथ प्रत्यक्ष रूप से भोजन ग्रहण करना होगा। प्रत्यक्ष रूप से जब हम भोजन खाएंगे तभी हमारी भूख मिटेगी। तो ज्ञान हमारी जन्म जन्मांतर की भूख को मिटाता है। वह ज्ञान कौन सा ज्ञान? बोले वो जो प्रत्यक्ष है और वह परोक्ष रूप से, अपरोक्ष ज्ञान जिसको हम कहते हैं, वो अपरोक्ष ज्ञान आखिर है क्या? बोले वो तो प्रत्यक्ष है, और उस प्रत्यक्ष को जो आमने सामने है उसी को अपरोक्ष रूप से हमको जब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी। और वो अनुभूति कब हो सकती है? बोले जब हम उसको महावाक्य, तो ये महावाक्य क्या है? बोले ये उपनिषदों का जो ज्ञान है ना, यही महावाक्य ज्ञान है, यही ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। और इसी विद्या से, इस जो उपनिषदों से मिलने वाली विद्या है, इस विद्या के द्वारा ही जो हमारे ज्योत से ज्योत जगाओ कहते हैं ना, इस शब्द से जो हमारे इन शब्दों के श्रवण करते 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 जो हमारे अंदर वृत्ति सूक्ष्म होगी, उस सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा, उस सूक्ष्म तत्व के साथ जो दिखाई नहीं पड़ता, उस तत्व के साथ जब ये वृत्ति जाकर मिलेगी, जो इन शब्दों के श्रवण करते 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 सूक्ष्म सूक्ष्म भीतर भीतर होते होते अपने अत्यंत सूक्ष्म के स्वरूप के साथ जब जा मिलेगी, अर्थात जानकारी हो जाएगी, उसकी पहचान हो जाएगी, जो वृत्ति अत्यंत सूक्ष्म है उसके साथ उसका साक्षात्कार जानकारी प्राप्त होगी, तभी जाकर के वह दिव्य तेज, वह सुख हमें प्राप्त होगा, वो दिव्य आलोक, वो दिव्य सुख प्राप्त होगा, जिस सुख को हम अब तक संसार में ढूंढ रहे थे। इसलिए कहेंगे तब कहेंगे स्वांताय सुखाय, मेरा स्वरूप अत्यंत सुखमय है, स्वांताय सुखाय, मेरे अंतस में सुख है, मेरे अंतस में आनंद है, मेरे अंतस में आनंद नहीं परम परमानंद है नारायण। ये जो परम आनंद है, मैं तो साक्षात परम परमानंद से घनीभूत हूँ, मेरे रोम रोम से, हर शरीर के हर छिद्र से नित्य निरंतर उस आनंद रस की फुहार बरस रही है। मधुवृष्टि इसको कहा गया है, इसी का नाम मधुवृष्टि है, मधु अमृत है, उसकी वृष्टि निरंतर रस गगन गुफा पर अजर जरे, जिसे संतों ने कहा ऐसा दिव्य रस जो निरंतर इससे झर रहा है, निकल रहा है, वो आनंद कहाँ से मिला? बोले वो आनंद मिलेगा इससे, इसलिए जरूर आप सब लोग परम सद्भाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ संत आते हैं और प्रातः काल के समय में बड़े प्राय यहाँ इस स्थान पर, जैसे कि प्रेमपुरी आध्यात्म विद्या भवन की एक परंपरा है कि यहाँ आकर प्रातः काल संत ब्रह्म चिंतन करते हैं और वो ब्रह्म चिंतन में उपनिषद आदि आप लोगों को सुनाते हैं। आप बड़े प्रेम से सुनिए और बार बार विचार करिए, एक बार नहीं अनेक बार सुनते 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 निश्चित रूप से एक न एक दिन आपकी वृत्ति बहिर्मुखता से हटकर अपने आप से होगी। और पहले ये सुनो कि देखो आपको बड़ा आनंद आता है, कब? जब कोई आपके पास आकर आपकी प्रशंसा करता है, आपकी तारीफ करता है, तो तब आप इतने खुश होते हैं अंदर से, भले ही बाहर से कह रहे हो अरे रहने रहने कोई बात नहीं, परंतु भीतर से आप बड़े खुश होते हैं, अंदर अच्छा लगता है। और तब आप सोचते हैं कि ऐसी बातें मीठी मीठी और कहे दो चार तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, आपको अपनी प्रशंसा सुनने में इतना आनंद आता है। तो आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जिसकी तारीफ यहाँ इतनी गाई जा रही है, जिसकी इतनी तारीफ करके ये शास्त्र जिसका वर्णन कर रहा है, वो कोई दूसरा नहीं है, वो मैं ही हूं। यही सोच करके उपनिषद पढ़नी शुरू कर दो कि इस पुस्तक में मेरी क्या क्या तारीफ की है, जरा मैं इसे सुनूं। यही सोच के सुनना शुरू कर दो, यही सोच के सुनना शुरू करो, तो निश्चित रूप से तारीफ ही सुननी है ना आपको, तो क्यों नहीं सुनते हो पुराणों में जो उपनिषदों में जो तुम्हारी तारीफ, उसको सुनो ना, तो उसको सुनने से आपको जो परम सुख मिलेगा, सुनना ही है तो इनमें सुनो आपकी क्या क्या तारीफ। तो इसलिए ये सोच करके आप ये सुनिए और अपने जीवन को रस और आनंद से अभिभूत कीजिए। जो रस जो तारीफ आपको इसको सुनने में मिलेगा, वो आपको संस्कृतियों की ये जो तारीफ हो रही है आपकी, ये अपौरुषिक वाणी के द्वारा हो रही है, ये ऋषियों की जो दृष्टि है, ये इन मंत्रों के जो दृष्टा हैं वो ऋषि हैं, और ये ऋषियों ने जो अनुभव किया है, ये जो बता रहे हैं वो ऐसे नहीं बता रहे। ऋषि उसे कहते हैं जो मंत्र दृष्टा है, और मंत्र दृष्टा वो है जिन्होंने इसको प्रत्यक्ष अनुभव किया है। ऋषि कैसे बने, जैसे उदाहरण के लिए एक बात समझना, अपौरुषिकता इसलिए बताई गई। मान लो एक सामान्य उदाहरण है कि दो बच्चे, दो लड़के अपनी माओ से कहने लगे कि माँ हमें वैष्णो देवी की यात्रा करने जाना है। एक माँ ने अपने बेटे को अनुमति दे दी और दूसरी माँ जब उसके बेटे ने उससे वैष्णो देवी जाने की बात कही, तो वो माँ सुनकर कुछ चुप सी हो गई और एक मिनट बाद उसने कहा, बेटा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा तेरा जाना, इसलिए तू वैष्णो देवी मत जा। परंतु बेटे ने कहा, नहीं मां, मेरा दोस्त जा रहा मैं भी जरूर जाऊंगा। परंतु मां कहती है नहीं बेटा, मेरा मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा। योगा योग हुआ कि वो चला गया और कुछ घटना ऐसी घटी कि वो ट्रेन का जो डिब्बा था वो पटरी से उतर गया, दुर्घटना हो गई, उस दुर्घटना में उसका बेटा चला गया। तो मां ये यहां एक मां जो सामान्य एक शरीर को जन्म देने वाली मां है, उस मां को वो होने वाली घटना का अंदेशा आभास होने लगा। जिसके मन में अनेकानेक विकार वासनाएं भरी हुई है, वो एक साधारण सी मां भी होने वाली घटना को उसका मन अंदर से महसूस करने लगा, भांपने लगा और इसलिए वो अपने बेटे को जाने से रोकने लगी। अर्थात मां जानती है कि कुछ घटना ऐसी होने वाली है, वो नहीं चाहती है कि उसका बेटा उस घटना से दुर्घटना से घटित हो। एक साधारण मां। तो उसी तरह से हमारे ऋषि जिनका अंतःकरण बहुत शुद्ध है, ऐसे पवित्र ऋषियों के जीवन में इन्होंने इस मंत्र को साक्षात्कार प्राप्त किया और साक्षात रूप से उन्होंने जो स्पष्ट किया अपने अंदर अपने भीतर, वो दिव्य मन की शक्ति से, दिव्यता से उन्होंने जो प्राप्त किया वही मंत्र बनकर के मंत्र दृष्टा ऋषि है। और वेदों में मंत्र ही है, उपनिषदों में मंत्र ही है, इन मंत्रों को उन्होंने उद्गृत किया, प्रकट किया। तो ऐसे जो पावन ऋषियों की वाणी है, मंत्र हैं, इन मंत्रों से जब आप अपने भीतर इन पवित्र मंत्रों को स्मरण करते हैं, अपने अंदर लाते हैं, अपने विचार में लाते हैं, अपने चिंतन में लाते हैं, अपने मनन में लाते हैं, अपने पठन पाठन में लाते हैं, तो आपका मन और हृदय भी उतना ही धीरे धीरे इन मंत्रों की शक्ति से आपका अंतःकरण भी शुद्ध होने लगता है और आपको अपनी दिव्यता, अपनी पावनता, अपनी पवित्रता, अपनी प्रशंसाएं सुननी है तो साधारण जन सामान्य व्यक्ति से क्यों सुनते हो, सुनो ना इन ऋषियों से, क्या बढ़िया महिमा आपकी बताते हैं। इन ऋषियों से, किसी अच्छे महान व्यक्ति से आप अपनी तारीफ सुनते हैं तो बड़े खुश होते हैं। मैं कहती हूँ इन ऋषियों से महान कौन होगा जो हमारी तारीफ, हमारी बातें हमको समझाएं। इसलिए आइए इसको सुनिए, रोज सुनिए और अपने जीवन को पवित्र करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों के लिए अपनी बहुत सारी अनेकानेक शुभकामनाओं के साथ मैं भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्यः पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
नारायण 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 नारायण। आइए हम सब हृदय की संपूर्ण गहराई से माता जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। सही माने में हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं, माता जी ऐसे संत, इनके मुखारविंद से हमें ईसावास्य उपनिषद सुनने का, श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माताजी की वाणी में सुनकर इतना आनंद आता है, मन इतना हल्का हो जाता है कि ऐसे है जैसे हमें सब कुछ मिल गया, शेष पाने को कुछ भी नहीं है। माताजी की बातों को यदि हम हृदयंगम करें, उन बातों को का मनन करें और उन बातों को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करें तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। माताजी ने कहा कि एक व्यक्ति भूल से प्रेमपुरी में आ गया, भूल से आने से उसका कल्याण हो गया, तो हम तो समझ बूझ कर यहां आते हैं तो हमारा कल्याण तो अवश्य होगा। माताजी ने कहा कि वो व्यक्ति भगवान का पता पूछने गया, अपना पता भूल गया, तो हमारा पता तो प्रेमपुरी आश्रम ही है। हम तो यही कहेंगे माताजी से, हमारा पता तो प्रेमपुरी आश्रम ही है। हम इतनी सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें सुनते हैं, उन बातों को हम पचा क्यों नहीं पाते? वो बातें हमारे हृदय में हमेशा हमेशा टिकती क्यों नहीं? इस पर हमें विचार करना है। माताजी ने कहा कि सिंहनी का दूध, शेरनी का दूध केवल स्वर्ण के पात्र में ही टिकता है और किसी पात्र में वह दूध टिकता नहीं है। यह ठीक बात हम पर लागू होती है। हमारा जो अंतःकरण है, यदि उसको हम स्वर्ण का पात्र बना लें तो ये अनमोल बातें टिक सकती है। कारण क्या है कि हमारे अंतःकरण में राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान, अहंकार, मेरा तेरा भरे पड़े हैं। हम सुनते हैं क्यों नहीं टिक पाते, इसके कारण। माताजी ने कहा इसका एक ही उपाय है, ईश्वर से प्रार्थना। हमने श्रीमद् भागवत में ग्राह और गजेंद्र की कथा सुनी है। गजेंद्र ने अंत में क्या किया, जब वो अपने बल से हार गया, उसने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने उसकी रक्षा की। हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी है और प्रार्थना के लिए माताजी ने कहा ओम। हमें ओम का जप करना है, ओम के महत्व को समझना है। तकलीफ क्या है, हम नाम के महत्व को समझते नहीं हैं। हम केवल एक मशीन की तरह, एक टेक प्रोग्राइडर की तरह जप करते हैं। हमें नाम के महत्व को समझना है। मैं और अधिक कुछ नहीं कहकर माताजी से एक शिकायत करूंगा। माताजी, आपने हमें अब की बार 6 दिन कम दिए हैं। बस एक ही प्रार्थना है, इसकी भरपाई आपको करनी है। न्यायाधीश आप हैं, न्याय आपको करना है। जय श्री कृष्ण। मैं आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से माताजी का स्पुष्ट अवार्ड द्वारा स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्ण।